जिसमें वैष्णव लोग आकर के ठहरे, यहाँ पर भगवान की कथा हो। वह मंदिर मंदिर नहीं जहाँ पर भगवान की कथाएं नहीं होती हैं, वो सुना है। वो ठाकुर जी वहां नहीं रहते, उठ करके चले जाते हैं जहाँ पर भी भगवान की कथाएं होती हैं। इसलिए मैं सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ, जो वैष्णव लोग आएंगे हम लोग भी आएंगे तो हम लोग यहाँ पर ठहर भी सकेंगे। सारी व्यवस्था कमेटी के लोग सब करेंगे और यहाँ पर हम लोग निर्विघ्न रूप में 6-7 दिन तक हरि कथा कर सकेंगे। और शहर के लोग भी, यहाँ पर हमारे जितने हिंदू भाई हैं या और लोग हैं, वो लोग सभी आ सकेंगे। हम लोगों का एक नियम है, विशेष करके मेरे लिए, मैं हार्ट डिजीज हूँ, हार्ट रोग वाला पेशेंट हूँ। अधिक रात होने से 7 बजे 7:30 बजे के बाद में कथा बोलने से कुछ पेन होता है। डॉक्टरों ने मना किया है कि आप 7:30 बजे तक जो कुछ हो अपना समाप्त करके अपना विश्राम दें। तो मैं कमेटी के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग द कमेटी मेंबर्स कि वे लोग यदि आरती का समय आध घंटा बढ़ा दें, पीछे की तरफ में हो जाए तो मैं लगातार 6 बजे से लेकर और 7:30 बजे तक बोलूं तो कुछ हरि कथा बोल सकता है, नहीं तो आध घंटे में कुछ हरि कथा नहीं होती। हमारे आश्रमों में जहाँ भी आश्रम है ऐसा ही होता है, जबकि स्पेशल फंक्शन होता है तो आरती को हम लोग थोड़ा सा आगे या पीछे बढ़ा देते हैं। ये दोष नहीं है, इस चीज़ को समझना चाहिए। इसलिए यहाँ के मंदिरों से हमारा हार्दिक निवेदन है कि इस पर विचार करेंगे, यदि संभव हो तो आध घंटे के बाद में आरती हो जाया करेगी और आप लोगों को लाभ होगा, ठाकुर जी को भी लाभ होगा। ठाकुर जी कान फाड़ करके कथा सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं और इनको ऐसी कथा सुनाएंगे जो आज तक तो कहीं इन्होंने सुनी नहीं होगी। ऐसी कथा इनको सुनाएंगे, आप लोग भी बड़े प्रसन्न होंगे। ये सुनने के लिए तरसते हैं हरि कथा, जहाँ होती है वहाँ पर हजारों कान लेकर के चले जाते हैं और पूजा पाठ मंदिर को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कमेटी के लोगों से, अमरनाथ जी तो यहाँ पर बैठे थे अब कहीं चले गए हैं, तो बहुत धन्यवाद है। अब अधिक से अधिक मैं कथा बोल सकता हूँ, इसमें कोई दोष होगा वो मेरे मत्थे पर है, मैं ग्रहण कर लूंगा। अच्छा अब मैं आरती हो गई ना,
नहीं
आरती कीजिए पहले ठाकुर जी की आरती करते हुए, दोनों एक ही हैं। लो आरती। हम भी थोड़ा सा एक मिनट के नए कमरा कर फिर बार बार उठना।
जय जय राधा कृष्ण
Thank you.
श्री चरण कमलों में दंडक प्रणति निवेदन करता है। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी मैं अपनी श्रद्धा दंडवती प्रणति ज्ञापन करता हूं। ह्यूस्टन इज लाइक मिनी इंडिया। I like it like my birthplace India। यहाँ पर मैं here I can speak freely Hindi। हिंदी में कथा बोलता हूँ जो बहुत कम जगहों में होता है। बंगला में भी बंगाली तो एक ही है, बाकी हमारे सब गुजराती और सब देशों के हमारे लोग भरे पड़े हैं इंडियन लोग। तो हिंदी में बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मधुर लगता है। जो अंग्रेजी में भाव प्रकाश नहीं हो सकते हैं, अंग्रेजी में कोई वर्ड ही नहीं है जिसको अभिव्यक्ति करने के लिए, उसको एक्सप्लेनेशन के द्वारा बहुत दूर से समझाना पड़े। हिंदी में, बंगाली में, गुजराती में, इन भाषाओं में अच्छी तरह से हम लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते। इसलिए मैं बोलूंगा हिंदी, किंतु श्याम रानी जी, श्याम रानी, सुंदर गोपाल, ब्रजनाथ प्रभु, माधव महाराज, सुबल सखा, ऑल आर हियर, दे आर वेरी क्वालिफाइड पर्सन, दे कैन ट्रांसलेट माई स्पीच, माई हरि कथा टू यू, but especially I will speak in Hindi। क्योंकि बहुत दिनों के बाद में ह्यूस्टन जैसे गैदरिंग मिली, मैं तो समझता हूँ ये हॉल घर बढ़ भर जाएगा तो शायद वो वीकेंड में कुछ कुछ होगा। अपने बंधु बांधवों को ले आएंगे, बतलाएंगे जो बड़ी सुंदर कथा हो रही है, आप लोग उसमें पधारिए, जरूर कहेंगे। अब मैं कथा आरंभ करता हूँ। तो आर्य तो ये आगे आश्रय देख नहीं सकते,
ये दिखती है ना गड़बड़। स्टैंड दे दीजिए,
पीछे से। हाँ ये तब अच्छा रहे, उसमें मत रखे नहीं, अलग से रख, ये निकाल करके, नहीं तो उसमें हाथ लग जाए, निकाल करके अलग रखे।
कर दूं आपको
और सामने से दीजिए, और सामने भी
अभी और क्या कर दूं,
एक समय की बात है, कलयुग आ रहा है, आज से 5000 वर्ष पहले कृष्ण के अंतर्ध्यान होने अपनी लीला को समाप्त कर दिया। 5000 पहले भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषि महर्षि डर के मारे कांपने लगे और गोमती के किनारे नैमिषारण्य क्षेत्र में, यहाँ रामचंद्र जी ने भी कथा सुनी थी, अंतिम सीता जी पताल में प्रवेश कर गई थी, उस जगह में वो 88,000 ऋषि लोग सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। और इतने में सुखदेव गोस्वामी के शिष्य और बलदेव प्रभु जी के शिष्य सुत गोस्वामी उग्र श्रवासु उपस्थित हुए, सब लोगों ने बीच में उनका बैठाया और उनको कहा, हे सुत गोस्वामी, आप सुखदेव गोस्वामी के से भागवत समस्त शास्त्रों का सार, वेद वेदांत उपनिषद सबके पुराणों का शास्त्र का सार श्रीमद् भागवत अपने अपने गुरु के मुख से सुना है और जो कुछ बाकी है वो बलदेव जी के प्रेरणा से आप सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्यत वर्तमान प्रायण अल्प आयुष शब्द अक्लास्मिन युगे जना मंदास मंद मते हो मंद भाग्यास उपद्रुता। कलयुग में अभी आ रहा है, आ ही गया है, परीक्षित महाराज जी के बाद में वही आने वाला था। अधिकांश लोग कलयुग में प्रायण अल्प आयु से कम आयु के होते हैं, बहुत थोड़ी उम्र के होते हैं, लाखों वर्ष की उम्र पहले होती थी, हजारों में आई और कलयुग में 100 वर्ष
वो भी अजितेंद्रिय लोग हैं, वो तो और भी कम हो गई। बहुत कम लोग इसमें से 100 वर्ष की आयु वाले कम ही लोग होंगे कि नहीं होंगे। 80-85 जाते जाते आदमी बहुत दुर्बल बुढ़ापा हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता। 100 वाले बहुत कम, भारतवर्ष में 125 देखे नहीं जाते, बस 110-115 में समाप्त हो जाते हैं। प्रायण अल्प आयुष मंदा, मंद भाग्य वाले, बुद्धि बड़ी शिथिल होती है, तेज नहीं होती, विचार नहीं कर पाते जी हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सुमंद मत है, और उनकी मति भी मंद है, वो अपना भलाई किस में है ये नहीं देखते। हमारी भारतीय संस्कृति बड़े अच्छे विचारों की है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और उधर में गुजरात से लेकर के बंगाल और आसाम तक जो हमारी संस्कृति है, एक संस्कृति है, बड़ी नपीतुली और कल्याणदायक। हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं ये क्या इसमें कार्य है। हमारे यहाँ छोड़ करके कोई भी लड़का नहीं बतला सकता है कि हम किसके पिता, पिता हमारे कौन हैं। वो तो भारतवर्ष की संस्कृति अभी है, यहाँ पर भी कुछ कुछ गड़बड़ होने लगी है। तुम लोग सब कुछ छोड़ना, भारतीय संस्कृति मत छोड़ना, एक पति प्रता रहना। पति भी वैसे हो स्त्रियों को सम्मान दे जैसे रामचंद्र जी सम्मान देते हैं, इस प्रकार से रहना चाहिए। हमारी संस्कृति के विचार इतने ऊंचे हैं, विश्व उसको ग्रहण करे तो उस सबका कल्याण हो जाए, जरूर कल्याण होगा, किंतु इतना कर नहीं सकते। विशेष करके पश्चिमी देश जो है ये भूस्वर्ग है, जैसे देवता लोग मनुष्य जन्म चाहते हैं, भगवान का भजन करें, चाहे ना चाहे इतना भोग उपस्थित होता है, इतना रुपये अंधाधुंध आता है, जिसको संभाल करके जीवन को चरित्र को ठीक रखना बड़ा भारी कठिन हो जाता है। उनको समय नहीं मिलता है भगवान का भजन करने का, वो तो कुछ संबंध हम लोग आते जाते हैं उसको ठीक बैलेंस रखे हुए, इसलिए कुछ कुछ है तो भी गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी बिजली हो करके हम कमी फ्रांस में दाढ़ी ओढ़ी रखते हैं या इंग्लैंड में थोड़ा सा यहाँ रख लिया, मुसलमान लोग यहाँ पर कमा देते हैं सब, यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये ऐसे सब देशों में है, किंतु भारतवर्ष में हमारे पुरखे लोग जैसा करते थे वैसा, उसमें कुछ ज्ञान और तत्व और कल्याण और भलाई है, भले ही उसको हम समझे और ना समझे, आज न कल हम समझेंगे इसमें हमारा कल्याण है। हमारे भारतवर्ष में चोटी रखी जाती है। अब हम देखते हैं विदेशों में जो अंग्रेज लोग और दूसरे लोग भी यहाँ पर केस रखते हैं, अब उस समझ रहे हैं ये कुछ कुछ। हम लोग उसको शिखा कहते हैं, ज्ञान की शिखा, आग की शिखा होती है ना, ये ज्ञान की शिखा है। यहाँ पर कुछ ऐसा है दिमाग का जो वहां पर केस रहने से उनके लिए सुविधा होती है, तो वो ठंडा मिजाज रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते। मंद भाग्य, अच्छा काम करते हैं किंतु होता है क्या, बुराई उसे मिलती है और ऊपर तरह तरह के उपद्रव। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, तरह तरह के। और कोई नहीं तो घर में भाई से झगड़ा है, नए तो रिलेटिव के साथ में कोई झगड़ा हो गया, स्त्री चली गई दूसरे के पास में, बेटा कुपूत हो गया, पिता ही वैसा हो गया, तरह तरह की समस्याएं हैं। भूरी कर्माणी, बहुत से कर्म उनके लिए हो गए हैं कि ये है हमारा दायित्व, तो ये है वो है। अरे मरने के बाद में तुम्हारा दायित्व तो तुम्हारे साथ में जाएगा, लड़की बेटे बेटा एक केस भी तुम्हारे साथ में जाएगा, जो जमा किया कलेक्शन किया करोड़ों डॉलर, एक फॉर्डिंग भी उसमें से तुम्हारे साथ में जाएगा, तो इतना चिंता क्यों। दुख बिना बुलाए आता है, वैसे सुख भी होगा तो बिना बुलाए आ जाएगा और तुमको भोगना पड़ेगा सुख, और नहीं जैसे बुढ़ापा आता है, कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मरना पड़ता है आदमी को। अर्जुन को कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन तुम मेरी बात नहीं मानता है, अभी तू लड़ता नहीं है, किंतु ये याद रखो कि बिना युद्ध किए भी कुछ दिनों के बाद में ये अपने आप मर जाएंगे, मृत्यु से बीमार होएंगे मर जाएंगे। युद्ध में मरने से ही मरते नहीं, जो युद्ध में नहीं जाते वो मरते नहीं है, मरते हैं। जो मिलिट्री में जाते हैं वो मान लिया कि मरते हैं, और बाकी लोग किस लिए मरते हैं, मृत्यु से जरूर मरना पड़ेगा, डरने की बात नहीं है। मृत्यु माने क्या, नया जन्म आरंभ। कैसे, हम शरीर नहीं है, मरे हुए शरीर हैं, आत्मा निकल जाए बस खत्म। इसलिए यदि मर रहे हैं तो किसके लिए, शरीर तो मरा हुआ है, आत्मा अजर अमर है, वो आग में पानी में कहीं भी नहीं मरती, उसको छू नहीं सकते वो लोग, तो डर किस चीज का, शरीर तो मरा हुआ है ही, आज ना कल वो मरेगा, इसमें से आत्मा निकलेगी, और इसमें अहम आत्मा जो है वो मरती नहीं है कभी, याद रखो। भगवान नहीं मरते, प्रहलाद नहीं मरा, हनुमान जी को पूंछ में आग लगा दिया तो वो मर नहीं गए, कृष्ण को विष दे दिया, काली हरद का विष सब पान कर लिए, कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद को विष दिया आग में जलाया नहीं मरा, आत्मा अजर अमर है। इसलिए डरो मत, खूब बहादुरी से रहो, भगवान का भजन करो, और जब जाना होगा तो उस समय शरीर को छोड़ करके कपड़े बदल लेना। इसलिए हे सूत गोस्वामी, यद्यपि अभी हम लोग समझते हैं कि हम वी हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्ल्ड, बट आफ्टर दैट व्हाट विल बी, विल यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल, कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए हे साधु, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों का, फ्यूचर प्रेजेंट और भूत का सबको जानने वाले हैं आप, ऐसा हमारी श्रद्धा है। हम श्रद्धालुओं के लिए बताया कि आत्मा कैसे प्रसन्न होती है, जेना आत्मा प्रसन्नति संप्रसीदति, कैसे आत्मा शरीर प्रसन्न होता है ये नहीं कहा, क्यों, ये तो मरा हुआ है, आत्मा है इसके अंदर में, इसलिए बोल चाल रही है, जिस दिन आत्मा निकल जाएगी सड़ गल जाएगा। इस चीज को रियलाइज करो, जो मनुष्य जन्म पा करके इन चीजों को ज्ञान लाभ करके भगवान का भजन नहीं कर लेता, उनका जीवन बड़ा दुखमय है, वो सुखी नहीं रह सकते हैं। व्हाट एवर यू डू टू प्लीज कृष्ण एंड गुरु, देन यू कैन बी हैप्पी, अदरवाइज नेवर एंड नेवर एंड नेवर, कभी हो ही नहीं सकता। इस प्रश्न को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी को, अपने गुरु जी को सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम कर कहने लगे। मैं इधर की कथा तो खूब संक्षेप में सुनाऊंगा, यहां जो कथाएं नहीं सुनाया है उस कथाओं को, कृष्ण की लीलाओं को मैं सुनाऊंगा, है ना, और बात तो सुना चुका हूं, और नारद जी का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र, और सब बहुत कुछ सुना चुका हूं, फिर भी उसको थोड़ा सा दोहरा देंगे, और इन लोगों को कह देंगे दोहरा देंगे, और मैं प्रेम के संबंध में, गोपियों के प्रेम के संबंध में अधिक रूप में बतलाऊंगा, जो आप लोगों के हृदय में कुछ छाप सी लग जाए। सूर्यतान सब कहना आरम्भ किया, सबई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रधो खजे अहे दुर्ग व्यविता जयात्मा संप्रसीद। सुख गोस्वामी बड़े प्रसन्न और अपने गुरु जी को प्रणाम किए, किसको, श्री सुख गोस्वामी, श्री माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माने राधा जी, उनके सुख, वो राधा जी के सुख थे, कृष्ण लीला के बाद में वो कृष्ण के साथ में राधा जी के साथ में जाना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने और राधा जी ने मना कर दिया, जगत शून्य हो जाएगा, कोई कथा कहने लायक नहीं रह जाएगा, इसलिए हम लोगों के बाद भी तुम इस जगत में रहो और भगवान की कथाओं का प्रचार करो। तो तब वो उनके कहने से बड़े विवश होकर के रह गए और एक दिन कैलाश में शंकर जी के और उनकी पत्नी पार्वती जी के साथ में यही कथा हो रही थी, भागवत की कथा। सुखदेव गोस्वामी सुख पक्षी के रूप में पेड़ के ऊपर में चढ़ गए जिसकी हरी भरी पत्तियां थी और उस पत्तियों में एक जगह छिप गए। पार्वती जी स्त्री स्वभाव से जब तक गहन तत्व की बातें आई तो सो गई। रसमयी कहां कथा नहीं मिली, तत्व की कथा आई, जगत की सृष्टि कैसे हुए क्या हुआ, तो वो सो गई। तो वो हुंकारी भर रही थी जो जहां आगे कहिए बहुत अच्छा, आगे कहिए बहुत अच्छा, तो वो तो सो गई। और बोले कौन तो सुख उनके बाद उनकी ठीक बोली का नकल करके वो भी बोलने लग गया। जब वो बोलने लग गया तो ये शंकर जी कथा सुनाते चले गए। जबकि तत्व की बातें खत्म हो गई, बहुत श्रीमद भागवत प्राय समाप्त हो गया, तो बोली जा रही मैं तो सो रही थी, आपने किसको सुनाया फिर से बता दो। तो ये किसने सुन लिया, तो सुन लिया जिसने सुन लिया। तो फिर खोज करके देखने लगे, देखा जो हरी भरी पत्तियों में एक हरा सा सुख भी उसमें बैठा हुआ, यही कहा। तो त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। भागवत की कथा अनाधिकारी लोगों को नहीं सुनना चाहिए, उनको सुनाना नहीं चाहिए। गोपियों की, जैसे कृष्ण ने गोपियों को कहा जी बिना वस्त्र के होकर के मेरे पास में आ जाओ, हमको प्रणाम करो, कहा ना। एक महीने तक व्रत किया था कात्यायनी व्रत, अंतिम दिन में कृष्ण आए, उनके कपड़े लेकर के कदम वृक्ष पर उठ गए, बोले ये तुम लोग प्रणाम करो। ऐसी कथाएं सुन करके लोग सामंजस्य नहीं कर सकेंगे, अपराध करेंगे। राष्ट्र की लीलाओं के लिए वो लोग अपराध करेंगे, क्यों? अरे दूसरों की स्त्रियों को लेकर के रास किया, ये तब बड़ गंदी बात है, हजम नहीं कर सकेंगे। इसलिए अनाधिकारियों के साथ में ये कथाएं नहीं सुनाना चाहिए। उनको भगवत की कथा के प्रति श्रद्धा हो और गुरु के प्रति श्रद्धा हो तो ये कथा को सुने। हम लोग भी ऐसा करते हैं, जिन लोगों को श्रद्धा है उन्हीं के पास में ये हरि कथा सुनने के लिए जाते हैं और उनको सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा, शंकर जी जब गए तो बद्री नारायण में पहुंचे, वो उड़ते हुए पहुंचे और ये भी पीछे से। वहां पर व्यासदेव जी अपनी पत्नी बीटिका जी को सुना रहे थे, यही भागवत की कथा, बड़ी सुंदर सुंदर, और ये सुन रही थी और बड़ी आश्चर्य चकित होकर के सुन रही थी, मुख खोल करके। इतने में मुख में वो प्रवेश करके भीतर चले। 12 वर्ष तक, कोई कहते हैं 16 वर्ष, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और सुनते रहे। ब्याज जी ने कहा ये कौन है जो इसके पेट में आ गया, कहते तुम जो कोई भी हो इससे निकलो, अपनी मैया को कष्ट मत दो, 12 वर्ष हो गए। उसने कहा जी मैं इस युग में क्या इस समय माया के अंदर में काल में मैं नहीं आऊंगा, तो मैं कहता हूं मैंने काल को एक मिनट के लिए हटा दिया, तुम आ जाओ। कहे तुम्हारे ऊपर में विश्वास नहीं है। किसके ऊपर में विश्वास है? कृष्ण के ऊपर में। उन्होंने आवाहन किया कृष्ण का, कृष्ण वहां पर आ गए और कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण हूं, मैं एक मिनट के लिए माया को हटा देता हूं, इसलिए माया के बाहर में तुम आ जाओ। बस झट आ गए और पिताजी ने वोहित इत्यादि कुछ नहीं किया, उपनयन नहीं दिया, ऐसे तैसे नाड़ी के छेदन का वो संस्कार नहीं हुआ, ऐसे भागे माया से निकल करके। पिता के साथ में माता के साथ में रहने से माया है, इसलिए माया को छोड़ करके एकदम जंगल में चले। और कथा तो लंबी है, आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं, अब वो सुखदेव स्वामी अपने गुरु को प्रणाम करके यंग प्रव्रजंत मनुपीत पीत प्रणाम करके कह रहे हैं अब कथा आरंभ करेंगे। सबई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। क्या अर्थ? सबई पुंसान, निश्चित रूप में संसार में जितने भी प्राणी उत्पन्न हैं, मनुष्य शरीर में हैं, उन लोगों के लिए परम धर्म है। दो प्रकार के धर्म है, एक लौकिक धर्म है, एक इतर धर्म है, लौकिक धर्म है, एक पारलौकिक धर्म है। परम धर्म आत्मा के लिए, शरीर के लिए अलग धर्म है। जिस शरीर से आप पैदा हुए हैं, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है, उनकी सेवा करना पड़ेगा, नहीं तो स्वर्ग में जाने में भी सुख नहीं होगा। अपना मांस काट करके खाना पड़ता है, जो माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते, इसलिए माता पिता का ऋण पर ऋण रहता है। जिसने शिक्षा दी, जिसने गुरु पुरोहित होकर के कार्य किए, जो हमें ज्ञान का उपदेश दिया, उनके प्रति देवताओं के ऋणी हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसी तरह से सब जितने हमारे हैं, जिनके द्वारा उपकृत हैं, उनके प्रति हमारा ऋण है। यह ऋण कब दूर होगा? भगवान का भजन करने से, अन्यथा ऋण दूर नहीं हो सकता है। तो सबई पुंसा, निश्चित रूप में एक ही बात है, इसमें दूसरा नहीं, अटल एक बात। क्या? पुरुषों के लिए, पुरुष मात्र के लिए, उसमें स्त्रियां भी आ गई, स्त्री और पुरुष मात्र के लिए, नर शरीर के लिए परो धर्म, परम धर्म है। क्या वो धर्म है? भक्ति रधोक खजे, जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते हैं, विश्वब्रह्मांड में अणु अणु में जो है, आग में भी है, हवा में भी है, सर्वत्र है, बाहर और भीतर है, वो जो प्रभु है, कृष्ण है, नंदनंदन बजेंद्रनंदन, उन अधोखज जो कृष्ण है, उनके प्रति अहेतु की भक्ति। अहेतु की माने बिना किसी लेन देन का, अहेतु की बिना किसी कारण से वो भक्ति हो, जयात्मा संतुष्ट। यदि ऐसी भक्ति होगी तो आत्मा प्रसन्न होगी, अपने आप प्रसन्न होगी, कहने की जरूरत नहीं होगी। एक आदमी हरिनाम करता है, भजन करता है, ठाकुर जी का अर्चन करता है, उसकी आत्मा प्रसन्न होगी, आत्मा प्रसन्न होगी। इसलिए अम्बरीश महाराज जी सब काम दूसरों से कराते थे, किंतु ठाकुर जी का अर्चन, उनका अंगना धोना, उनके लिए भोगराग की व्यवस्था, वो सब अपने आप करते थे, नौकर के द्वारा नहीं। उनको कुछ दे दिया, $1,000 महीना दे दिया, उसे नहीं, वो तो अपना काम है। तुम्हारा बेटा है तो नौकर रख दो, वही खिलाए पिलाए, तुम प्यार मत दो, तो क्या होगा? बिगड़ जाए। तो ये कृष्ण भी वैसे हैं, जो यशोदा मैया का प्यार देखा ना, उसके बिना कृष्ण रह सकते हैं? सखाओं का प्यार देखो, उनके प्यार के बिना ये रह सकते हैं? गोपियों का प्यार देखो, जो उनको चोर चोट्टा जो कुछ है सब कुछ उनको कहती है, और वो वेद के मंत्रों से भी प्रसन्न नहीं होते, यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होते। तो इसी को हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी के हृदय में स्फूर्णा दी, और उन्होंने लिखा है जो वेद शास्त्रों का सार है, किसको भक्ति कहते हैं, ये सब उसी के अंतर्गत में आ जाएंगे। वो क्या लिखा उन्होंने? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुकूल्य निरंतर जमयी तैल धार आवत अविच्छिन्न गति से कृष्ण में जिनका चित्त लग जाता है, खाते पीते उठते बैठते सब समय दिन रात, जिनका चित्त ऐसा लग जाता है। अनु गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में हो भक्ति, अपने आप मन के खिलवाड़ नहीं, जो मन लगे वैसा करो। बहुत से लोग कहते हैं कि मन हमारा ऐसा करता है वैसा ही करें, नहीं, कृष्ण को क्या रुचिकर है ये देखो, कृष्ण के लिए रुचिकर हो और उनके लिए हितकर हो। कैसे कैसे हितकर हो? जसोदा मैया वो दूध फैला दिया ना कृष्ण ने, जब दूध फैला दिया तो वो लठिया लेकर के आए और पीछे से पकड़ लिया और कहीं फिर ऐसा करेगा, बेंत से मारूंगी तुम्हें। तो रोने लगे, कौन? विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक, जो एक मिनट में समस्त विश्व की सृष्टि ध्वंस करके नए करोड़ों यूनिवर्स को तैयार करते, ही सो पावरफुल दैट इन ए मोमेंट ही कैन डिस्ट्रॉय होल यूनिवर्स एंड इन ए मोमेंट ही कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ यूनिवर्स, वेरी पावरफुल। तो वो उसको कर सकते हैं, इसलिए भूलेगा बीच मात खाने एक बोल इशारा की बोल चले बोले। तो कृष्ण ध्वंस कर सकते हैं और उन्होंने सारी शक्ति नाम में दे दी है, तो सब आई पुनसांग पर अन्ना विलासिता सुन ज्ञान कर्माध्यान अनुकूलेन कृष्णन। वैष्णव के अनुगत्य में हो, गुरु जी के अनुगत्य में हो, जिसको गुरु निष्ठा नहीं है उसको कृष्ण भक्ति कदापि नहीं होगी। अपने मन से करने से, बिना गुरु के हम कर लेंगे, बीच में दलाल की क्या जरूरत भैया, इसमें दलाली ही काम करती है। बिना गुरु के वो भजन नहीं होगा, ये एकदम गांठ बांध करके रख लो। नहीं तो ब्रह्मा जी ने से नारद जी ने और फिर सुखदेव गोस्वामी ने व्यास जी से, व्यास जी ने नारद से, चैतन्य महापुरुष ईश्वर पूज्य से, कृष्ण ने सांदीपनी मुनि से, किसे बस ये क्यों लिया? बेकार की बात नहीं है। इसलिए जिसने गुरु कर्ण नहीं किया आपसे अभी तुरंत आरंभ कर दे, बिना गुरु के कृष्ण नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, याद रखो। झूठ मूठ का खिलवाड़ नहीं है, हम लोग इसको रियलाइज करते हैं। हमारे गुरु जी नहीं मिलते, आज मैं कहाँ का कहाँ बैठा हूँ, सारा विश्व भगवान की तरफ मेरी पूजा करता है, जहां जाते हैं यहाँ पर तो कम, अभी बेजर में था वहां पर हजारों आदमी एकत्रित हुए, 7 दिन तक छोड़ नहीं रहे, 7 दिन तक, उसके आधा का आधा का आधा भी तो यह नहीं है। अभी हम जाएंगे नॉर्थ कैरोलिना, वहां अभी से हजारों आदमी बैठे हैं मेरी कथा सुनने के लिए, अंग्रेजी में कहेंगे वो भी टूटी फूटी में तभी सुनेंगे, दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए गुरु की सेवा जो नहीं किया है, गुरु की निष्ठा जिसमें नहीं है, जिसने गुरुकरण नहीं किया जो, तो हम ऐसे ही करते हैं, कृष्ण ले लेंगे, नहीं होगा। गुरु की महिमा सबसे पहले व्यास जी को नारद जी ने बतलाई थी, भागवत में है। इसके बाद में अनुकूलन कृष्ण के लिए रुचमान हो, तो जसोदा जी जो मार रही हैं और वो रो रहे हैं, तो लठिया फेंक दिया के उसको तुमको बांध करके रखेंगे, नहीं तो कहीं भागवत में जाए इधर, इसलिए तो बांध। और कृष्ण रो रहे हैं, डकर करके रोए, मैया छोड़ दे अब नहीं करूंगा, तो ये भक्ति है। हाँ भक्ति क्यों? कृष्ण के लिए रुचकर तो नहीं है, किंतु कृष्ण के लिए हितकर है। समझ में आ रहा है ना? कृष्ण के लिए रुचकर नहीं है, रो रहे हैं, किंतु है क्या? कृष्ण के लिए हितकर है, जो ये बीच बिगड़ न जाए कहीं। अपना जो भगवान भी है हमारा बेटा है, इसलिए हमारा उनके प्रति कर्तव्य, ये हितकर है। और चारण मुष्टि कृष्ण से लड़ रहा है, कृष्ण ने देखा जी आज बहुत दिनों के बाद एक वीर से लड़ रहे हैं, वो मर रहा है तो इनको फूल जैसा लगता है, बड़ा उत्साह होता है, तो ये उत्साह भक्ति नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए रुचिकर तो है किंतु हितकर नहीं है, वो उनको मार डालना चाहता है, इसलिए प्रतिकूल मई है, इसलिए भक्ति नहीं है। और ये उत्तमा भक्ति, ये भक्ति हुई उत्तमा कब होगी? अन्ना अभिलाषिता शून्य, कोई तरह का संसारिक लालसा उस भक्ति के बदले में नहीं, ये कृष्ण से ये ले लू ना? इसका उदाहरण पीछे दिखलाएंगे। और उसकी भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होगी तो ये उत्तम भक्ति होगी। कृष्णदास तुम लोग में भी तैयार है कीर्तन करने वाली ना? कोई है कीर्तन जो करती थी पीछे साल? वो आई नहीं है, है? ठीक है।
हरे सरदार हरे लाल की जय, जय जय श्री राम कृष्ण गोविंद गोविंद
Oh,
प्रसाद जी एक कीर्तन कीजिए। तो हारमोनियम आपके पास है उसे कीजिए। स्वामी जी अब गुरु को प्रणाम किया और कथा भी आरंभ किया और भक्ति के लिए बतलाया इंद्रियातीत नारायण नहीं, नारायण के भी मूल अंशी राम, हाँ राम के भी अंशी नारायण, हाँ नारायण लक्ष्मी नारायण के भी, द्वारकाधीश कृष्ण के भी मूल अंशी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। उन श्याम सुंदर में भी सखाओं के सखा हैं, नंद और यशोदा जी के बेटे हैं, प्यारे लड़के हैं, पुत्र हैं, और गोपियों के प्राण प्रियतम हैं, मोस्ट बिलवेड। शादी तो द्वारका में हुई, वृंदावन में किसी गोपी की शादी कृष्ण काले के साथ में नहीं हुआ, उन्होंने काले कृष्ण के साथ में शादी करना ही मना कर दिया। ये कहता है ब्रज की हमारी जितनी लड़कियां हमारी पत्नी है, नहीं किया, उसमें भी बहुत से रहस्य हैं। तो नारद जी बहुत वर्तमान भविष्य जानने वाले हैं, ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, व्यास जी के भी गुरु हैं। व्यास जी वेदों का भी भाग कर दिया, उपनिषदों को अक्षर ब्रह्म कर दिया, अक्षर के रूप में प्रतिलिप्त कर दिया, पुराणों को कितने 54 पुराणों को लिखा, पुराण उपपुराण शाखा पुराण प्रकाश किया, महाभारत को भी उन्होंने बनाया जिसमें कि गीता विषम पर्व का केवल 18 पर्व है अध्याय है, इसको भी लिखा, सब कुछ किया, किंतु आज उनको शांति नहीं है। वे अपने आश्रम में गंगा के तट पर बैठकर के चिंता कर रहे हैं, मैं जगत का गुरु हूं, जगत को शिक्षा दिया, किंतु मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। जयात्मा शुरू जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, हमारे गुरु जी नारद जी ने बतलाया जयात्मा संप्रसिद्ध थी, भगवान की सेवा करने से परमार्थ का अनुशीलन करने से आत्मा प्रसन्न होती है। आज मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं है, कहीं कुछ कमी है मेरी आत्मा में प्रसन्नता में, क्यों निर्णय नहीं कर पा रहे। और इतने में नारद ऋषि वहां पर पहुंचे, नारद जी उनके गुरु हैं, बेटा यद्यपि ये व्यास जी नारायण हैं, नारायण क्या अवतार हैं, और नारद जी भक्त अवतार हैं, भक्त हैं, तो भी आज गुरु शिष्य का संबंध है। कृष्ण के गुरु और राम के गुरु वशिष्ठ जी उनको डांट सकते हैं, उनको अधिकार है, उनको चेस्टाइज करने का अधिकार है, वो संबंध ही ऐसा है जो हो। आज नारायण स्वरूप जो व्यास हैं उनको नारद जी कहते हैं, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है, तुमने सब कुछ लिखा, वेदों का विभाग किया, पुराण उपनिषद सब लिखे, महाभारत ग्रंथ लिखा, उसमें गीता भी लिख दिया, कुछ बाकी तो रखा नहीं तुमने, चित्त प्रसन्न है। मैं देखता हूं तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है, वो ऊपर देख करके ही गुरु बतला देगा, हाँ गुरु जी क्यों, तो यही तो मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं है, मैं चिंता कर रहा था, मैं बड़ा दुखी था, ये इतना सब करने पर भी धर्म तत्व का निगूढ़ जानने पर भी धर्म तत्व की जगत में शिक्षा देने पर भी मैं सुखी नहीं, क्यों। बेटा तुमने एक काम किया, जो धर्म अर्थ काम की तुमने जो प्रशंसा लिखी शास्त्रों में, इस पर तुमने अधिक जोर दे दिया, और कृष्ण की लीला कथाओं को तुमने जोर नहीं दिया। जिन लोगों को अर्चन में रुचि है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विचारों में उसको रुचि है, किंतु भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है, तो उनका परिश्रम सब व्यर्थ है। आ रहा है समझ में, हरि कथा में रुचि नहीं हुई और सब कामों में रुचि हुई, धर्म अर्थ माता पिता की सेवा करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हम सुखी होंगे। यह धर्म की शिक्षा है, वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा। इसमें रुचि, इससे क्या होगा, धर्म से अर्थ पैदा आएगा, और अर्थ से क्या होगा, फिर हम धर्म कर्म करेंगे और उसे सुखी रहने की चेष्टा करेंगे शरीर से। तुमने ये तो किया, किंतु भगवान की लीला कथाओं का वर्णन तुमने नहीं किया। क्या तुमने ये लिखा, सखा लोग अपना जूठा कृष्ण को खिलाते हैं, लिखा सखा कृष्ण के सखा लोग क्या करते हैं, हनुमान जी विभीषण सुग्रीव अपना जूठा निकाल करके रामचंद्र को दे सकते हैं कि नहीं,
नहीं।
उनको आलिंगन ऐसा भर सकते हैं, उनके आसन पर बैठ सकते हैं, और कृष्ण के सखा क्या करेंगे, खा रहे हैं मधुर कोई चीज निकली निकाल करके, पकौड़ी बड़ी अच्छी लगी निकाल करके खिला दी, रसाला तांबूल इत्यादि सब कृष्ण का आलिंगन कर लेंगे, और कृष्ण सो रहे हैं तक धत्तेरी और कह करके उसके बिछौने पर बढ़ करके उसे उठा लेंगे, और गैया डकर रही है, हमारे सखा लोग तुम्हारे लिए वहां पर खड़े हैं, नहीं कर सकते। सीता जी क्या कभी मान कर सकती हैं, राम उनको मनाएंगे बैठ करके एक घंटों, और गोपियों के लिए ये प्रेम है। तुमने प्रेम की बात लिखी, जय कृष्ण जैसे गोपियों के चरण में उनको मनाते हैं, घंटों मनाते हैं, और गोपियां उनको तू चोर है छोटा है ऐसा ही है तरह तरह की बातें, लंपट है बातें करते हैं, कृष्ण जान पूछ करके ये सब सुनने को, उसमें यज्ञ से उनकी तृप्ति नहीं होती। नहीं लिखा तुमने, तो ये लिखो ना, तो ये तुम्हें जानता नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा भक्ति जो का सर, भक्ति जो मैंने अनकंडीशनल सरेंडर टू गुरु एंड कृष्ण, भक्ति जोगे न मनसी सम्यक पढ़े अमले अपश्यत पुरुषपूर्ण मायांश, भक्ति जोग अर्थात शरणागत हो गए कृष्ण के, मैं कुछ नहीं जानता। गुरु के पास में जाओ तो यह मत दिखलाओ कि मैं बहुत विद्वान हूं ना? मैं बहुत तेजस्वी हूं, बुद्धिमान हूं, ये सब काम में बहुत मैं वाकिफ हूं, ये मत दिखलाओ। दीनहीन होकर के उनके चरणों में जाओ तो कुछ देंगे, और नहीं तो भगा देंगे। एक अंधे व्यक्ति थे, उनका नाम था गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, पढ़े लिखे नहीं थे, अपना नाम भी अक्षर नहीं कर सकते थे, लिख नहीं सकते थे साक्षर, और भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, समस्त शास्त्रों को वेद वेदांत उपनिषद सबको जानने वाले श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गए जी, हमको आप शिष्य बनाइए, हमको मंत्र दिए। उन्होंने कहा हमारा प्रभु जब आदेश लेंगे वो कहेगा, तो तर्क आदिया नहीं दिया, 10 दिन तक नहीं दिया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने सुना था ये बच्चे को मारेंगे, तब उनके कहने से कहा जैसे मैं पूछूंगा अभी गौर निताई से, जब वो कहेंगे तो दूंगा। तो फिर दूसरे दिन कहा मुझे याद नहीं रहा पूछने के। हम लोग शिष्य के लिए यदि धनी मानी हो ना, अमर सिंह अमरनाथ जी आ जाए, दूसरे आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, और वो सब लोग आ जाए, तो कहा आ जाओ अभी 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 अशुभ मुहूर्त है, अभी ले लो, कल नहीं, काल करो सो आज, आज करो सो आप, अभी 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 तुरंत, आज खा लिया कोई बात नहीं, खा लिया तो कोई बात नहीं, आज ले लो। शिष्य हमारा यदि भक्त ना जाए, बहक ना जाए, बहक ना जानते हैं ना, भड़क ना जाए, दूसरे के यहां ना चला जाए, तो उनको शिष्य करने की लालसा नहीं है, शिष्य में सारा दायित्व तो लेना पड़ता है जीवन का, ऐसे नहीं, योग्य शिष्य नहीं है और योग्य गुरु नहीं है तो उनको संसार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अयोग्य व्यक्ति शिष्य न करे। जो गुरु की सेवा कर चुका है, गुरु को प्रसन्न करता है, ऐसे लोग ये करेंगे। तो नारद जी के कहने से उन्होंने देखा क्या, उस समाधि योग में अपश्यत पुरुषम पूर्ण कृष्ण देखा, कृष्ण की लीलाओं को देखा, उनके माता पिता को देखा, गोपियों को देखा, रास देखा, गोपी गीत, भ्रमर गीत सब देखा और देख करके जस्यावै सुयमाणायम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूपपद्यते पुंसक शोक मोह भया। उन्होंने जो नहीं जानते हैं इन चीजों को, उनके लिए भागवत की रचना की जिन्होंने समाधि में देखा था, जैसे वाल्मीकि जी ने समाधि में रामायण देखा नारद जी की ही कृपा से, ऐसे ही इन्होंने देखा और उसको हम लोगों के लिए लिपिबद्ध कर दिया। आज उसको श्रवण करके हमारा जीवन सार्थक होता, हम समझे और ना समझे हरि कथा में आए हैं, जरूर आप लोगों का कल्याण होगा ही। तो ये यदि किसी को गुरु बनाया और गुरु योग्य नहीं है, तुमको शुद्ध भक्ति नहीं दे सकते हैं, तत्व नहीं समझा सकते, तुमसे आदेश लेकर के दूसरा गुरु के पास ले, और आदेश नहीं देते हैं तो भी छोड़ करके दूसरे गुरु के पास ले जाओ, इसमें दोष नहीं है। जो गुरु अपने गुरु की सेवा नहीं करता, गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी बात को नहीं मानता है, वो अपराधी है। ऐसे अपराधी व्यक्तियों से लिया हुआ नाम भी छोड़ करके दूसरी जगह जो वैष्णव है तो उससे, ये गुरु तत्व है। इसके संबंध में पीछे से माधव महाराज जी बतलाएंगे। देखो अब जो बतलाया हमने, अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ज्ञान आवेश, इसमें प्रेम की बात है। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण सेवा होनी चाहिए तन से मन से वचन से, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण के लिए हितकर हो, रुचिकर हो, सभी बातें उसमें हो, वैष्णवों के अनुगत्य में हो, सहित धारावत अपिछिन्न गति से हो, तो ये भक्ति है ना। अब ये देखो ध्रुव जी के जीवन में, अब देखो ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान को पाया, शंख चक्र गदाधारी नारायण को उन्होंने 6 महीने के बाद में, खाना पीना यहां तक कि सूखा पत्ता भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दी, हवा भी छोड़ दी, सांस लेना भी बंद कर दिया। कठोर तपस्या के बाद में भगवान ने उनको दर्शन दिया शंख चक्र गदा पर, और उनको 36,000 वर्ष का राज्य दे दिया, अकंटक निष्कंटक राज्य दे दिया। किंतु हुआ क्या, उन्होंने भगवान की कौन सी सेवा की, इस पर निर्भर करता है। भगवान का हाथ पैर दबाया, उनको भोग लगाया, कुछ खिलाया, कोई तन से मन वन से वचन से उनकी सेवा की या नहीं, इस पर भक्ति निर्भर करती है। केवल स्तुति स्तोत्र पाठ से नहीं होगा, केवल कीर्तन से ही नहीं होगा। गोपियां क्या करती थी, जब नंद हमारी मैया यशोदा जी क्या करती थी, तुलसी बना करके खिलाती थी ना, और मक्खी को भगाती थी, अपना स्तन पान कराती थी। नंद बाबा क्या करते थे, कितनी सेवाएं करते थे, सखा लोग कैसी सेवा, गोपियां कैसी उनकी तन से मन से वचन से सेवा करते, ये सेवा होनी चाहिए। इसलिए ध्रुव जी ने एक अभिलाषा के लिए संसारी, क्या हमको पृथ्वी का राज्य मिल जाए, पिता का राज्य मिल जाए, पिता की गोदी में हम बैठ सके, इसके लिए किया, और उनको 36,000 वर्ष के लिए मिल गया। तो ये एक अभिलाषा हुई ना, संसारिक इच्छा रही, इसलिए इनकी भक्ति शुद्ध नहीं है, ये समझो। भले ही कृष्ण को वो नारायण का दर्शन कर दिया ना? समझ रहे हैं क्या कहा, इनकी भक्ति में दोष क्या है ध्रुव जी के, बतलाइए आप बतलाइए। राज चाहते थे उसके भक्ति के बदले, इसलिए नहीं होगा। इन्होंने यदि ये मंदिर इसलिए बनाया और ठाकुर जी की प्रतिष्ठा इसलिए की कि हमको बहुत प्रतिष्ठा मिल जाएगी और लोग दूर दूर तक हमको जानेंगे, तब तो गड़बड़ हो गया। क्यों भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, मैं अपने हाथों से भगवान की सेवा करूंगा, हमारी पत्नी इनके लिए रसोई बनाएगी, हमारी बेटियां इनको श्रृंगार करेंगी, जैसे वो सेवा करती है श्रृंगार करती है ना, हाँ तो ऐसे श्रृंगार करेंगी, और दूसरों काम के लिए पुजारी जी रहेंगे, घंटा और ये बजा देंगे, तब तो ये शुद्ध भक्ति, इसलिए इनकी भक्ति में कुछ दोष। और भी क्या, अंत में जब ये जाने लगे लोक में, ध्रुव लोक में, उन्होंने कहा मेरी मैया कहाँ है? अभी मैया के प्रति है कृष्ण, यशोदा जी मैया है ये भाव नहीं आया। कृष्ण ही हमारे माता पिता पुत्र परिवार सब कुछ कृष्ण ही है, ऐसा भावना नहीं आया। इसे इसमें इसकी आवश्यकता है क्या? ध्रुव में ये कमी थी, इसलिए मैया को यहां, तुम्हारी मैया तो अभी सामने जा रही है, तो वो ध्रुव लोक में गए। वहां पर क्या सेवा करेंगे? हो सकता है कि पीछे से नारद जी की कृपा से उनको कुछ और आगे मिला, किंतु अभी जो हम देखते हैं ध्रुव लोक स्थिर है, सूर्य भी उसी की परिक्रमा करता है, चंद्र सभी उन्हीं की करते हैं। प्रहलाद जी का चरित्र देखो, ध्रुव जी से श्रेष्ठ है, जरा बोलो तो क्यों श्रेष्ठ है प्रहलाद जी? तुम बोलो, हाँ हिंदी में बोलो। तीन चार मिनट में बोलो कुछ सबसे, क्योंकि समय आरती का हो रहा है, अब एक मिनट आगे नहीं बढ़ेंगे।
ध्रुव महाराज जी की राज्य प्राप्ति की अभिलाषा थी, भगवान की कुछ सेवा नहीं किया, उनको गोती कहाँ मिली? ध्रुवलोक में, इसी ब्रह्मांड के अंदर।
और जोश है।
और प्रहलाद महाराज जी वो कैसे थे? वो सब जगह में ही सब जीवन में भगवान का दर्शन करते थे और भगवान के अंदर सबको दर्शन करते थे। वो भगवान को प्रसन्न करना चाहा, कभी अपने लिए पिताजी का राज्य मिल जाए, मैं पृथ्वी का अफसर बन जाऊंगा, मैं सम्राट बनूंगा, ऐसे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं थी उनको। पर ध्रुव महाराज जी को अपने स्टेप मदर कुछ बोला तो मन करके मेरा कोख से जन्म ले, तभी अपने पिता के गोदी में या सिंहासन में बैठ सकता है। दूसरी ओर प्रहलाद महाराज जी जिनके पिताजी सासाराम पृथ्वी के अधीश्वर थे, उनके कहने पर हवा चलती थी, इंद्रदेव वर्षा करते थे, सब देवता भी उनके अधीन थे, वही पिताजी क्या कर किया प्रहलाद महाराज जी को मारने के लिए? अपने हाथों से भजन में विष मिला दिया, पहाड़ की चोटी से फेंकवाया, समुद्र में गिरवाया, पगला हाथी से पूछा पाया, कभी भी पिताजी का विरोध नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, सबसे भगवान को स्मरण करते थे। इसलिए कहा गया स्मरण प्रहलाद, प्रहलाद स्मरण, सब समय भगवान को स्मरण करते थे। भगवान से कभी नहीं कहा कि मेरा पिताजी को शास्ति दो, जो मेरा ये कर इसके लिए कभी नहीं कहा। जब विष्णु को भगवान प्रकट हुए उनसे वर मांगना कहा, वर मांगने को कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा हे प्रभु अगर मुझे कोई मांगने की इच्छा हो या खत्म कर दीजिए। ध्रुव महाराज जी वर मांग रहे हैं, असल भगवान आके कह रहे हैं तू वर मांगो, प्रहलाद जी कह रहे हैं ये वर मांगने की इच्छा को नष्ट कर दीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरा दर्शन अमोघ है, ये कभी विफल नहीं जाता, फिर भी तुम कुछ मांगो। प्रहलाद महाराज ने कहा प्रभु जी मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, तू कुछ पैसा दो कुछ सामान लो, ऐसे तो नहीं है मैं आपकी सेवा की से बोर लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं, मैं ये बोर नहीं चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि कुछ बोर मांगना ही पड़ेगा। क्या बताया प्रभु जी मेरा पिताजी आपको विरोध किया है, उनका कल्याण हो। भगवान ने बताया तुम्हारा पिताजी का कल्याण पहले ही हो चुका है, तुम जैसे भक्त हो उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, मध्यम श्रेणी के भक्त होने पर 14 पीढ़ी का और कनिष्ठ भक्त होने पर 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, इसलिए तुम्हारा पिताजी का उद्धार हो चुका है। फिर भगवान ने नहीं कुछ बार मांगो तो बताए प्रभु जगत के लोग आपको भूल करके दुख भोग रहे हैं, मैं ये समस्त जगत का दुख ले करके मैं भोगना चाहता हूँ और समस्त पृथ्वी का प्राणी का उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा प्रहलाद तू जीता मैं हार गया, लेकिन ऐसी बात नहीं, जो तेरे और मेरे के बीच में जो कथा हुई है, जो मेरी लीला है श्रवण करेंगे सुनेंगे तो जरूर इस जगह से उद्धार हो जाएगा। ध्रुव महाराज जो अपना स्वार्थ चाहा और प्रहलाद महाराज जी समस्त जगत का स्वार्थ देख रहे हैं, अपना स्वार्थ करीब भी नहीं देखा, बहुत से कारणों की वजह से प्रहलाद महाराज जी जो हमारे बहुत लोग श्रेष्ठ है और आगे हम आगे बढ़ेंगे, पूरी स्वर्ण करेंगे हरे कृष्ण।
तो इस तरह से सेवा प्रधान है। प्रहलाद महाराज जी सब कुछ किया, इनके अंदर में कोई संसारिक अभिलाषा नहीं है, इनकी भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं है, ये बात तो ठीक है। किंतु उन्होंने जब नृसिंह जी आए उनकी क्या सेवा की, हाथ पैर दबाए, कुछ भोग लगाया, क्या की? तो ये अन्नाभिलाषिता शून्य तो है, कोई डिजायर नहीं है, किंतु अंदर में से कोई सेवा की प्रवृत्ति क्यों नहीं की? अरे ये तो सर्वांतर्यामी है, ये तो ब्रह्म है, परब्रह्म है, इनको भूख नहीं लगती है, ये समस्त प्राणियों के मूल हैं, इनकी सेवा हम क्या थकते नहीं है, इसलिए मैं इनकी क्या सेवा करूं, स्तुति करने लगे। किंतु हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी के रामचंद्र जी को भूख लगती है और प्रहलाद जी के महाराज जी को नृसिंह को भूख नहीं लगती है। नृसिंह जी को भूख लगेगी, प्यास लगेगी नहीं, इसलिए वो सेवा तो कर नहीं सकते। और हनुमान जी के जो परब्रह्म हैं, उनके जो आराध्य हैं, वो कौन है? राम। हनुमान जी क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगे, उनको फल फूल ला करके खिलाएंगे, उनके पैर को दबाएंगे, सीता जी को हरण करके लंका जी का दहन कराएंगे, सब काम करते हैं। इस तरह से प्रेममयी सेवा करते हैं, सेवा के ऊपर में भक्ति निर्भर करती है। इसलिए ये गुरु तत्व जो बतलाते हैं वो महान होते हैं। बिना गुरु के भवनिधि तरह न कोई, बिन गुरु हरिविधि तरह न कोई। बिना गुरु के यदि ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई व्यक्ति हो तत्व जानने वाला, गुरु नहीं है,